अच्छा जावेद साहब, एक सवाल ये आया है कि क्या गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान का निकाह हो सकता है, क्योंकि अहले किताब के साथ तो निकाह की इजाजत दी गई है।
ये बात यह है कि निकाह क्या चीज़ है। निकाह के नतीजे में आप कोई दोस्ती का ताल्लुक उस्तवार नहीं करते, खानदान बनाते हैं। आपकी औलाद होनी है, आपके बच्चे होने हैं, उनकी तरबियत होनी है, उनको किसी दीन पर होना है, ये सारे मामलात होंगे ना। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले दिन इस पोजीशन में नहीं होता कि अपना फैसला खुद कर सके।
ठीक।
अब सवाल यह है कि आप जिन चीज़ों को अपना आदर्श, नस्बुलैन, अकीदा, नुक्ता नज़र समझते हैं, उनके बारे में आपकी हसासियत का क्या आलम है। मैं अगर पलट कर आपसे ये पूछूं कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, आपको ये मालूम है कि फलां साहब खाते पीते तो बहुत हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके कारखाने हैं, उनकी तजारत है, उनके पास बहुत माल और दौलत है, लेकिन पक्के रिश्वतखोर हैं, मिलावट करते हैं। हद ये है कि जो दवाओं का कारखाना लगा रखा है उसमें ही मिलावट करने से बाज नहीं आते। आप पसंद करेंगे शादी करना?
नहीं करेंगे।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके कुछ अखलाकी उसूल हैं जिनको आप निकाह के दायरे में कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आप ये कहते हैं कि नहीं, इनकी खिलाफवर्जी होगी तो नहीं होगा।
ठीक।
अब इसी चीज को एक और दावे से देखिए, मैं तौहीद का मानने वाला हूं, यानी मेरा ईमान यह है कि इस कायनात का तन्हा एक ही परवरदिगार है, मुझे घर बनाना है, मैं वहां एक ऐसी खातून को कैसे ले आऊंगा कि जो शर्क करती, जो दो खुदाओं को मानती। यानी मुझे मालूम है कि शर्क कितनी बड़ी नजासत है। अगर तो मैंने अपना नाम मुसलमानों में लिखवा रखा है तो फिर तो ये मेरा मसला नहीं है। मैंने इसीलिए मिसाल दी कि अगर मेरा मसला अखलाकी उसूल है तो फिर तो मैं ये देखूंगा कि माल और दौलत से भी पहले इस आदमी का किरदार और इसकी सीरत क्या है। इसी तरीके से अगर मजहब और मजहबी अकायद मेरा मसला है, यानी तौहीद और शिर्क मसला है, मैंने सिर्फ मुसलमानों के रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखवाया हुआ, मैं यकीन रखता हूं इस बात पर कि इस कायनात में दो खुदा नहीं है और खुदा का कोई शरीक नहीं है, मैं अपने घर में इसको कैसे गवारा करूंगा। इस वजह से अगर कहीं शिर्क मौजूद है और इधर तौहीद है, इन दोनों के दरमियान निकाह नहीं हो सकता। यही मामला अब रिसालत में आप सरसन के बारे में देखिए। मैं एक शख्सियत को खुदा का पैगंबर मानता हूं,
ठीक,
उसकी तरफ वही आई है, जिब्रील अमीन आए, उन पर नबूवत खत्म हुई। अब फर्ज कर लीजिए कि एक खातून है, वो ये कहती है कि नहीं माजल्ला हाकम बदहन, उन्होंने तो झूठा दावा किया था,
ठीक,
मैं इसको गवारा करूंगा। तो असल में बात यह कि ये सवालात वो लोग पूछते हैं कि जिनके यहां मजहब और मजहबी अकायद, उनकी हसासियत खत्म हो चुकी होती है, वो नस्ली तौर पर एक नुक्ता नजर के मानने वाले होते हैं। इस वजह से वो ये ख्याल करते हैं कि अच्छा ये बताइए कि फलां से निकाह हो सकता है, फलां से निकाह नहीं हो सकता। यानी असल में निकाह का मामला एक बड़ा संगीन मामला है, घर बनना है, खानदान वजूद में आना है।
पहले किताब के साथ तो इजाजत दी गई है ना?
वो इजाजत किस वक्त दी गई? उस वक्त दी गई जब इस्लाम का गलबा कायम हो गया, रसूलुल्लाह की दावत के नतीजे में इत्मामे हुज्जत हो गया, अल्लाह ताला का अजाब उन पर नाजिल कर दिया गया, उनको मौका दिया गया कि वो ईमान ले आए, वो ईमान नहीं लाए तो उसके बाद ये कह दिया गया कि अब ये जिजिया देकर और मगलूब होकर रहेंगे। उस मौके के ऊपर उनकी सिर्फ ख्वातीन से इजाजत दी गई कि वो हमारे माहौल में आएंगी तो गलबे के मुकाम पर खड़ी होकर नहीं आएंगी, औलाद पर वो असरअंदाज नहीं होंगी, हम असरअंदाज होंगे, हमारी तहजीब असरअंदाज होगी, तो वो खदशात कम हो गए, तो यूं समझ लीजिए कि उनके साथ इजाजत दे दी गई। तो मेरे नजदीक यह है कि आप खड़े कहां हैं। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं जो गैर ममालिक में है कि हमारी बच्ची है, हमारा बच्चा है, अब वो फलां हिंदू के साथ या फलां के साथ निकाह करना चाहते हैं तो ये हो सकता है। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि ये तजवीज उनकी तरफ से आई है? वो कहते हैं कि हाँ उनकी तरफ से आई है। तो मैं ये कहता हूं कि आपने उनको तौहीद बताई थी, आपने उनको रिसालत में आप सरसर के साथ ताल्लुक सिखाया था, आपने पैगंबरी की अहमियत वाजे की थी। अगर ये सब आपने नहीं किया तो अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं? यानी ये मेरे नजदीक कानून का मसला ही नहीं है, इसको लोग कानून का मसला बनाकर बयान करते हैं। असल मसला यह है कि अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में यह कहा कि किसी मुशरिक के साथ निकाह नहीं हो सकता, या किसी मुशरिका के साथ निकाह नहीं हो सकता, और यह कहा कि एक मोमिन लौंडी भी तुम्हारे लिए और गुलाम भी बेहतर है उससे, वजह क्या है? वजह यह है कि तौहीद पर ईमान की यह हैसियत है कि उसके साथ शिर्क को गवारा नहीं किया जा सकता। ये कैसे हो सकता है कि तौहीद और शिर्क दोनों एक छत के नीचे सोए हुए? ये नहीं हो सकता, एक बिस्तर पर सोए हुए।
ठीक है जावेद साहब, आपकी जो डिस्कशन है उससे मुझे जो महसूस हुआ वो ये कि उस जमाने में जब मुसलमानों का गलबा हो गया तो ये आयात नाजिल हुई, और ये मतलब ये इजाजत दी गई कि उनकी औरतों से निकाह किया जा सकता है, अहले किताब की औरतों से। तो आज चूंकि ये गलबा बज़ाहिर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब आपकी नजर में आज इसको इस तरह से हम नहीं ले सकते, अहले किताब की औरतों से निकाह आज नहीं होना चाहिए।
यानी मैं कानूनी जवाब नहीं दूंगा, मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप करेंगे तो उसके नतीजे में आप अपनी औलाद को खोएंगे, آپ اپنے عقیدے کو کھوئیں گے. چنانچہ آپ کبھی سروے کر کے دیکھ لیجئے, جو لوگ بھی اس طرح کی خواتین کو لائے اس کے نتیجے میں ان کی اولاد مسلمان نہیں ہوئی. تو آپ اس میں حساس ہیں یا نہیں؟ یعنی میرے نزدیک یہ سوال پوچھنے والا جب سوال پوچھ رہا ہے تو یہ مجھ پر صاف واضح ہو رہا ہے کہ اس کے نزدیک مذہب اب مسئلہ نہیں رہا, وہ اصل میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا چاہتا ہے. تو پوچھ رہا ہے کہ قانونی لحاظ سے مجھے اس کی اجازت ہے یا نہیں. کہ میں نے اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ رشوت لینے والے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ قانون کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, ملاوٹ کرنے والے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یعنی جس طرح یہ اخلاقی معاملات میرے لیے شدت کا باعث ہے, میں اس میں حساس ہوں, میں یہ پسند نہیں کر سکتا, یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس نوعیت کے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں گھریلو تعلقات استوار کروں. یعنی یہ معاملہ دوستی اور باہر ملنے کا نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے آپ گئے ملے آ گئے, آپ کاروبار کر رہے ہیں, کچھ اور معاملات ہیں. یہ گھر بننا ہے, خاندان بننا ہے, اولاد پیدا ہونی ہے, اس کی پرورش اس کی تربیت کی ذمہ داری مجھ پر ہے. قیامت کے دن مجھے اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے, ان کو مجھے ایک ماحول فراہم کرنا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اس بہت بڑے فیصلے میں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بے احتیاط ہو جاؤں؟ اسی وقت ہوں گا جب وہ چیزیں میرے نزدیک اہمیت کی حامل نہیں ہوں گی. ملاوٹ اہم نہیں ہے تو گوارا کر لوں گا. دواؤں تک کو آلودہ کرنا اگر میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اصل چیز دولت ہے, تو گوارا کر لوں گا. اسی طرح اگر شرک توحید میرے نزدیک مسئلہ ہی نہیں ہے تو سوال پوچھنے کے لیے آ جاؤں گا, مسئلہ ہے تو نہیں آؤں گا.